तो आज हम भगवान के असीम कृपा से उपस्थित हैं। ये बहुत ही पुरातन गांव है। पुरातन काल से इस गांव का नाम है मुखारावली। यहां के जो निवासी हैं वो इसे राधा रानी के गांव के से भी इस रूप में भी मानते हैं, क्योंकि वास्तव में यह श्रीमती राधा रानी के नानी का गांव है। जब यशोमती मैया गर्भवती थी उससे पूर्व भी, लेकिन यशोदा माई जब गर्भवती थी और तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उनका लालन पालन कर रही थी मैया, तो मुखारा देवी ये उनकी धात्री थी। मैया के साथ रहकर भगवान कृष्ण की धात्री के रूप में सेवा करती थी। और यहां पर जब भी श्रीमती राधा रानी अपने माता पिता के साथ यहां पर इस स्थान पर रहती तो यहां पर भी वो उनका देखभाल कर किया करती थी। तो यह गांव उनके नाम से प्रसिद्ध है, मुखारा देवी का गांव मुखारावल्ली। वल्ली अर्थात गांव या पूर, और मुखारा उनका नाम। लेकिन क्योंकि कलयुग है, कलयुग में हर चीज शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है ना, तो मुखारावल तो रावल हो गया गांव। इस प्रकार से इस गांव का नाम रावल है। अब एक बार श्रील प्रभुपाद जी, जिनके कृपा से हम यहां पर आज आए हैं, वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवचन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका नहीं, क्षमा कीजिएगा, अफ्रीका में, अफ्रीका के किसी एक देश में। तो अधिकांश जो अफ्रीकी जो प्रांत है उसके जो निवासी हैं उनका शरीर या उनकी कांति जो है ये बहुत ही गहरे काले रंग की होती है। अगर आम भाषा में कहा जाए तो काले लोग हैं वो। हम लोग थोड़े से भूरे माने जाते हैं भारत में। तो श्री प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे थे कृष्ण का रंग भी काला है, श्याम सुंदर। तो प्रवचन पश्चात वहां पर जो स्थानीय भक्त थे उनमें से एक बहुत ही प्रसन्नता से पूर्ण रंजित उनका चेहरा, ओ प्रभुपाद जी, कृष्ण क्या वास्तव में काले हैं? प्रभुपाद जी ने कहा हां, लेकिन आपकी तरह नहीं। तो उसी प्रकार से जब हम इन तीर्थ यात्रा पर तीर्थ क्षेत्रों में आए तो अपने इस चर्म चक्षु से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर आ जाइए। हमसे कहा गया चर्म चक्षु का प्रयास न करना है, आंख मूंद कर मत आइए यहां, प्रयोग कीजिए उसका, लेकिन सिर्फ उन्हीं प्रयोग के आधार पर ही सब कुछ समझने का प्रयास मत कीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारी समझ के इन चर्म चक्षुओं के समझ के परे हैं, तो फिर अन्य एक चक्षु का प्रयोग करना है। और ये चक्षु हैं कर्ण, कर्ण चक्षुओं का प्रयोग करना है। और श्रवण द्वारा हम वास्तव जो तत्व है, वास्तविक तत्व है, उसे समझकर अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। ये चर्म चक्षु क्या है, थोड़ी देर देख लिया उसके समय कुछ और दिखाई पड़ता है, ज्यादा देर तक उसे धारण नहीं कर पाते अपने अपने इन चक्षुओं में हम। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कैमरा में लेकर उसे खींच लेंगे, फिर ज्यादा भर जाए कैमरा तो डिलीट करने लगेंगे, देखेंगे ना ये ठीक नहीं आया इसे डिलीट कर दो। अधिकाधिक तो इतना ही प्रयास करेंगे ना, परंतु हृदय में अगर धारण करना है तो इन चक्षुओं के साथ साथ महत्वता, अधिक महत्वता दी गई है श्रवण पर। तो श्रवण द्वारा हमें समझने का प्रयास करना है। तो आज जिस स्थान पर हम हैं वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस स्थान में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी। नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा क्यों राधा रानी हमारी बंबई में प्रकट नहीं हो, कितना सुख सुविधा है वहां पर, किसी एक कोने से गांव में प्रकट हो गई है, बस भी ठीक से पहुंचते नहीं वहां तक, काश कोई बंबई में, पुणे में, नहीं तो बेलगांव में भी हो जाती तो ठीक ही है। क्योंकि इस स्थान में श्रीमती राधिका प्रकट हुई है, वृंदावन धाम है, भगवान का निजी धाम है, इसलिए इस स्थान का बहुत महात्म्य है। आदि पुराण नामक एक शास्त्र है जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद है। आप कोई और शास्त्र जानते हैं जहां पर कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद हो? कोई और शास्त्र जानते हैं आप? निश्चित है ना कि मन में कोई शंका है, संशय तो नहीं है? भगवत गीता है ना कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद, उसी प्रकार से आदि पुराण उसमें भगवान कृष्ण का अर्जुन जी के साथ संवाद है। और उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रैलोक के पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधा मम। त्रैलोक्य तीनों लोक मतलब बंबई, दिल्ली और कलकत्ता नहीं, क्योंकि वास्तव में लगता है यही तीन लोक हैं इस जगत में। एक बार हम किसी से बात कर रहे थे तो ऐसे बातचीत में उन्होंने कह दिया, हाँ तीन लोक मतलब मेरा घर, पड़ोसी का घर और सामने वाला घर। तो तीन लोक अर्थात भू, भू और स्व, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या, तीनों लोकों में ये पृथ्वी बहुत धन्य मानी गई है, ये भूमि, ये जो भूतल है इसे बहुत धन्य माना गया है। क्यों? तत्र वृंदावनमपुरी, उस क्योंकि इस भूतल पर वृंदावनपुरी है, वृंदावन धाम है। कितने वर्ष बीत गए हमें इस शरीर में जबकि हमें पता ही नहीं था कि वृंदावनपुरी की वजह से ये पृथ्वी धन्य है। अब जाकर शास्त्र के आधार पर समझ रहे हैं। और तत्रापि गोपिका पार्थ, वृंदावन अपने आप में क्यों इतना उसका महात्म्य है, वृंदावनपुरी को क्यों इतना हम महत्व देते हैं, भगवान क्यों वृंदावन वृंदावन अक्सर करते रहते हैं? मथुरा भी जब चले गए, द्वारका भी चले गए, तो हमेशा ब्रज की याद में ही खोए रहते थे, ऐसा क्यों है? तत्रापि गोपिका, क्योंकि वहां पर भगवान के जो सबसे शरणागत भक्त हैं, उनसे परे कोई और शरणागत भक्त संसार में दिया क्या, टॉर्च लेकर भी नहीं दिखेगा, कोई और औजार किसी और चीज का प्रयोग करने पर भी कोई ऐसे शरणागत भक्त नहीं मिलेंगे जैसे कि गोपिकाएं। तत्रापि गोपिका पार्थ, हे अर्जुन, वृंदावनपुरी की शोभा इसीलिए है क्योंकि वहां पर गोपिकाएं हैं, हमारे भक्त हैं। लेकिन गोपिकाओं की भी महात्म्य इसलिए दी गई है, भगवान गोपी गोपी इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनमें राधा है, राधा श्रेष्ठ है, श्रीमती राधा रानी। समझाया जाता है, यह भी शास्त्र में ही समझाया गया है कि भगवान अपने आप में परिपूर्ण व्यक्ति हैं, आत्माराम, कोई बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भीतर से भी अपने आप में पूरी तरह से तुष्ट व्यक्ति हैं। आत्मरामस्य कृष्णस्य। आत्मराम कौन है? कृष्ण। कृष्ण अस्य आत्मराम, ये श्लोक दिया गया है। आत्मरामस्य कृष्णस्य, तो कृष्ण अपने आप में आत्मराम है, लेकिन अस्य उनकी ये आत्मरामता जो है, रमण जो है, अपने आप में रमण करने की उनकी जो उनका जो ये स्वभाव है वो कहां से आया है? आत्मस्ति राधिका ध्रुवम। कभी कभी हम विचार करते हैं कि कृष्णा बुक में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं द्वारका में प्रातः काल एकदम ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रभु उठकर अपना जो नित्य उनके क्रियाएं हैं उसे करने के पश्चात ध्यान में बैठ जाते थे, ध्यान मग्न हो गए भगवान द्वारका में। लेकिन भगवान क्या ध्यान कर रहे हैं? ओम शांति, ना ना ऐसे ऐसे कोई ध्यान। आत्मा राम है, अपने ऊपर, अपने आप में, अपने भीतर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन उनके भीतर क्या है? आत्मस्ति राधिका, आत्म अस्ति, भीतर राधिका है, उनके हृदय में राधिका है, उन पर ध्यान कर रहे हैं। अगर भीतर में राधा रानी नहीं रहती ना, तो हमारे कृष्ण आत्माराम कहलाते नहीं, कभी रमण नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं कर पाते वो। भगवान ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि भीतर में राधा रानी है। इसलिए तो कहते हैं शास्त्र में, रा शब्द उच्चारणात् स्फिटो भवते माधवा। बोलिए रा, ऐसे नहीं, रा,
रा।
अब लग रहा है सुर में आप बोल रहे हैं, लेकिन हम सुर ताल छोड़ दीजिए और हृदय से पुकारिए रा,
रा।
स्फिटो भवति माधव। देखिए भाग कर आ गए कृष्ण, यहां पे उन्हें उल्लास होता है, हर्ष होता है, रा शब्द सुनते ही भगवान नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और धा शब्द उच्चारता, रा शब्द उच्चारण आदि, रा शब्द के उच्चारण के बाद भगवान ने जो है मग्न हो गए हैं। और जब तो कोई धा बोले पश्चात धावत्ते, वो जो धा शब्द है किस ओर से कहां से प्रकट हुआ है, भगवान उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कौन है जिसने ये धा शब्द बोल दिया? रा शब्द सुनकर तो नाच रहे हैं, मग्न हो गए, भगवान बांसुरी बजाना भी भूल जाते हैं, मग्न हो गए हैं। धा शब्द उच्चारता पश्चात धावते संभ्रम, भगवान भ्रमित हो जाते हैं। वो कौन भक्त है जिसने धा शब्द बोल दिया, राधा शब्द बोल दिया? तो अब रा के बाद क्या बोलना है हमें? धा। और दोनों को मिलाकर क्या होता है? राधा, राधा। ऐसे सुनकर भगवान जो हैं बिल्कुल मोहित होकर उस भक्त के पास दौड़े आते हैं। कौन है जिसने राधा रानी का नाम जो है ले लिया है? तो ये है संक्षिप्त में श्रीमती राधा रानी का, उनका महात्म्य। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया था कि कृष्ण को हमें अपने सांसारिक इंद्रियों से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को और राधा रानी का भगवान कृष्ण के साथ जो उनका शरणागत रूप में प्रेम है या सेवा है, उसे भी अपने जड़ इंद्रियों से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए? एक मार्ग दिया है, सेवा। न भवित ग्राह्यम इंद्रिय श्री कृष्ण नामादि। ग्राह्य इंद्रिय से नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप में से कितने यहां से, यहां पर जितने भक्त, कितने बंबई वासी हैं, विचार कर लीजिए। और एक बार पूछते हैं, बंबई के निवासी कितने हैं यहां पे? विचार करके हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, अब मुंबई वासी कितने हैं बताइए? तो शब्दों में इस प्रकार का हमेशा खेल होता है। और बंबई वासी हैं या बंबई के किसी एक छोटे से कोने में आप रहते हैं, तो ये जो शब्द है समझने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान और तत्व, सांसारिक या भौतिक रूप से भी इसमें बहुत सारा तत्व भरा हुआ है मुंबई शब्द में। अर्थात वो क्षेत्र, वो प्रांत, वहां पर रहने वाले लोग, उनके अलग अलग प्रकार के, उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनकी रीतियां, कितनी नदियां हैं, कितने नाले हैं, सब इस बंबई एक इन तीन शब्दों में सब कुछ आ गया है। यह मुंबई ऐसे अधिक। उसी प्रकार से जब हम राधा कृष्ण, ये तो दिव्य नाम है ना, इसमें कितना रस, इसमें कितना तत्व होगा, ये तो विचारणीय भी नहीं है। इसलिए कभी कभी शास्त्र कहते हैं अविचारणीय है ये, या विचार के परे। विचार के परे का अर्थ ये नहीं होता है कि विचार करना छोड़ दीजिए, कितना ही आप विचार करें और विचार करने के लिए बहुत तत्व बच जाएगा, इसका यह अर्थ। अर्थात संपूर्ण जीवन इस पर विचार करते रहेंगे, इसके ऊपर लेख लिखते रहेंगे, इस पर ध्यान करते रहेंगे, इसका मनन करते रहेंगे, तब भी बहुत बच जाएगा विषय ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि करने के बाद फिर सोचता है व्यक्ति अब आगे क्या करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप कहते हो कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, जाप करने से क्या हमें भगवान का दर्शन होगा, क्या हम भगवत धाम चले जाएंगे? तो हाँ ऐसा है, तो वहां पर जाने के बाद फिर क्या करेंगे? कृष्ण को हम देखेंगे, हम कृष्ण को देखेंगे, उसके बाद क्या होगा? प्रभुपाद जी ने कहा हम और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। मतलब उसके आगे, उसके जप करने से और क्या मिलेगा? हम ये विचार करते हैं उससे क्या मिलेगा, तो बहुत कुछ मिल सकता है, अभी के लिए इतना काफी है, बैक होम, बैक टू गॉडहेड, अभी के लिए भगवत धाम जाना इतना हमारे लिए बहुत हो गया, वहां पर पहुंचने के बाद आगे का रहस्य खोला जाएगा, तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। तो एक प्रवचन में बहुत पहले श्री प्रभुपाद जी 1969 में सुंदर रूप से ये तत्व समझाते हैं, कहते हैं कृष्ण कौन है, कौन है कृष्ण बताइए। तो सबको ऐसे बैठे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भगवान है ना भगवान, भगवान को तो हर कोई मानता है ना, मानता है कि नहीं मानता है? हर कोई मानता है ना भगवान है, कृष्ण को ना माने लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान को तो हर कोई मानता है ना, सारी दुनिया भगवान को मानती है, सारी दुनिया कहती है कि भगवान बहुत श्रेष्ठ है, भगवान है, भगवान किसको मानते हैं? विचार कीजिए, सारी दुनिया भगवान को मानती है, भगवान किसको मानते हैं? राधा रानी को। तो विचार कीजिए कि वो राधा रानी कैसी होंगी, जिसको संपूर्ण जगत मानता है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को अगर मान ले या उसकी मान्यता रखे तो कितनी उनकी श्रेष्ठता होगी। और अगर कृष्ण के सामने जाकर 10 बार दंडवत प्रणाम करने के बाद भी लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, पता नहीं भगवान सोचेंगे 11वां ही नहीं डाला इसलिए इसकी जो इच्छा है पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है, तो राधा रानी के सामने कितने बार दंडवत करना चाहिए विचार कीजिए। तो क्यों भगवान को क्यों मानते हैं? प्रभुपाद जी आगे कहते हैं क्यों मानते हैं, क्योंकि संसार में लोगों की बहुत सारी आवश्यकता है, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, शरीर शारीरिक बुद्धि चाहिए, शारीरिक सेहत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सब ये जो चाहत है उसके लिए कहां जाएंगे? गवर्नमेंट ने तो कोई ठेका का दुकान खोला नहीं है कि ये सारी चाहतें पूरी हो जाएं, कि आइए जी आपको राशन कार्ड पर अच्छी बुद्धि मिलेगी, आइए ले लीजिए, ऐसा होता है क्या? और जहां पर गवर्नमेंट ना खोले तो हम क्या खोल पाएंगे बताइए, क्योंकि हम खोलेंगे तो महंगा मिलेगा, गवर्नमेंट कम से कम राशन की दुकान में कम सस्ते दर पे देती है, तो जब गवर्नमेंट ही नहीं खोल पाए तो हम क्या करेंगे, सब चाहतों के लिए कहां जाएंगे। तेरे दर पे आया हूं है ना, दर पे जाना पड़ता है भगवान के, भगवान के यहां पर भी भगवान। तो इसलिए भगवान को हम मानते हैं। और ये सारी जितनी भी हमारी चाहते हैं ये सब किसके अधीन है, इसे माया कहा गया, ये माया शक्ति के अधीन है। माया शक्ति के अधीन हमारी इतने सारी आवश्यकताएं हैं और ये माया शक्ति भगवान के दिव्य शक्ति की परछाई मात्र है। कभी कभी किसी के परछाई देखकर अगर लगे कि अरे परछाई कितनी सुंदर है, हाथ में सोने के कंगन है, कानों में सोने की बालियां हैं, बालियां ही होती है ना, इत्यादि इत्यादि परछाई देखकर, तो क्या परछाई के ऊपर कोई टूट पड़ेगा लेने के लिए सब कुछ, या विचार करेगा जिसकी परछाई है वो कितना सुंदर होगा। तो हमारी जितनी सारी अभिलाषाएं, जितनी सारी चाहते हैं वो सब माया शक्ति के अधीन उनके डिपार्टमेंट में है। तो अगर माया ये बहिरंगा शक्ति भगवान के दिव्य शक्ति की परछाई मात्र है तो सोचिए कितने गुणों के साथ और कितने सारे सुंदर आभूषणों से वह शक्ति जो है वह आभूषित होंगी या अलंकृत होंगी, कौन से अलंकार होंगे उनमें, कितने सारे गुण होंगे उनमें जिससे वो सुशोभित हैं, उनका स्वरूप सुशोभित है। और ये दिव्य प्रकृति जो है ये राधा रानी है। तो संसार में इतने सारे आकर्षणीय वस्तु हैं जो पूरी तरह से हमारे मन और इंद्रियों को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन यह आकर्षण एकमात्र परछाई है। तो अगर राधा रानी के डिपार्टमेंट के अधीन जो कुछ हमें सुख सुधा, या सुख तो छोड़िए, सुख तो सांसारिक एक सुख दुख ये द्वंद्व के रूप में प्रकट होता है, परमानंद जो प्राप्त होगा उनके नेतृत्व में उनके अधीनता में रहकर उसका हम विचार भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये भगवान की दिव्य शक्ति है। फिर दूसरी चीज भगवान कृष्ण के बारे में भगवान शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं, कहते हैं कि देखिए कभी आपने देखा है संसार में कृष्ण कहते हैं, कभी आपने पढ़ा कोई लीला में भगवान कहते हैं ओ मैया, कभी एक बार कभी आप दिल्ली का लड्डू ले आओ मेरे लिए, आगरे की पेठा ले आओ, या बंबई का चाट ले आओ, इतना ही नहीं तो मद्रास का डोसा ले आओ, इडली ले आओ, नहीं ना कहते हैं, ना ही भगवान मैया से कहते हैं कि मुझे न्यूयॉर्क का कोई बड़ा स्काईस्क्रेपर चाहिए, या बंबई का अंबानी जी का जो बिल्डिंग है उससे बड़ा बिल्डिंग बना कर दो, ऐसे भगवान नहीं कहते। भगवान किस चीज में रमण करते हैं, अपनी लादिनी शक्ति में, इसलिए उन्हें अलादिनी शक्ति कहा गया, जो भगवान को आनंद प्रदान करे। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान को पूर्ण रूप से आनंदित कर सके, थोड़ी बहुत भक्त जो सेवा करते हैं उससे भगवान थोड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन पूर्णतया उन्हें कुछ कोई आनंद संतुष्ट कर दे नहीं है। उनकी संतुष्टि सिर्फ लादिनी शक्ति में है और यह लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो जो कृष्ण को संतुष्ट करे, कृष्ण को आनंद पहुंचाए जो कि यहां के सांसारिक आनंद से कहीं परे है, कभी कभी उनकी तुलना करने के लिए कह दी जाती है कि ठीक है एक संसार में अगर आनंद 1 किलोग्राम का है तो वहां का आनंद 1 किलोग्राम से भरा हुआ 100,000 करोड़ गुना उतने वजन का अगर समुद्र कोई हो तो उसके बराबर का वो आनंद है। ऐसे तुलना की जाती है कि एक विशाल समुद्र हो अगर उस आनंद उस समुद्र रूपी आनंद कृष्ण को श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति के रूप में प्रदान करती हैं, तो उसके सामने संसार का आनंद एक बूंद के समान है। लेकिन ये वैसे ही कहना है जैसे अगर किसी को समझाना हो कि भाई ये पेठा क्या होता है, पेठा है क्या, या किसी जिसे रसमलाई पता ना हो कि रसमलाई है क्या, या किसी को समझाना हो कि कोल्हापुर का भड़ंग क्या होता है ना, तो कैसे समझाया जाए, तो उसकी तुलना की जाती है। देखो अगर थोड़ा सा कुरमुरा लो, उसमें बहुत सारा मिर्ची फेंक डालो ऐसे, और थोड़ा नमक के साथ छिड़काओ, तो लेकिन क्या उसकी तुलना की जा सकती है? लोग जब तक कोल्हापुर का भड़ंग नहीं खाया तो क्या खाया आपने, तो तुलनात्मक रूप में कहा जाता है ये वैसा होगा, बस वास्तव में कोई तुलना नहीं की जा सकती, किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से तुल्यात्मक रूप में समझाया गया है कि परमानंद है क्या। लेकिन सही में अगर समझना चाहे तो कृष्ण के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाविष्णु जी भगवान कृष्ण के अंश के विस्तार के विस्तार के अंश के रूप में मात्र हैं, और वो भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। वह कृष्ण जिनके दर्शन प्राप्ति के लिए लालायित हों, वो श्री राधिका कैसे होंगी, कितना आनंद देती होंगी। श्री प्रभुपाद जी इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि विचार कीजिए कि कितनी उनकी श्रेष्ठता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्षमा कीजिएगा, समय कम है इसलिए आप मत गाइए, मैं गाता हूं। आज कोई मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं। कहते हैं कि गोकुल तरुणी मंडल, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तरुणी मंडल क्यों कहा गया आप जानते हैं, क्योंकि ब्रज बालाएं जो हैं, अरे वो लक्ष्मी, उनके चरणों में लक्ष्मियां रहती हैं, अनंत कोटि लक्ष्मियां रहती हैं, ये ब्रज बालिकाएं हैं। गोकुल तरुणी मंडल और महित जो महिषी हैं, उनकी जो महारानी है, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए जहां तक आपका और हमारा अनुभव है वह यह है कि जो तरुण होता है वो तरुणी से आकर्षित होता है, जो तरुणी होती है तरुण से आकर्षित होता है, स्वाभाविकता। लेकिन यहां पर ये जो तरुण तरुणी मंडल है, गोपिकाओं का जो गुट है, जिनके सामने लक्ष्मी जी चरणों में आकर प्रार्थना करती हैं, जिनसे लक्ष्मी जी उनसे थोड़ा उनके उनके सेवा द्वारा, उनके प्रार्थना द्वारा उनकी थोड़ा सौंदर्य, उनका थोड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं, अनंत कोटि लक्ष्मियां, ये सारे गोप बालाएं जो हैं ये राधा रानी से आकर्षित होती हैं। तो कहां पर ये प्रभुपाद जी कहते कहां पर ये देखा गया है कि गोप बालिकाएं जो हैं ये राधा रानी से आकर्षित रहती हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, तो ये उनका स्तर है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए हमें नतमस्तक होकर राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। कि सारा जगत जो है, जितने भी जीव हैं, भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं, भगवान राधा रानी की तरफ दौड़ रही हैं, और जितने भी गोपिकाएं हैं वो भी राधा रानी को श्रेष्ठ मानती, तो कौन है संसार में जो राधा रानी से श्रेष्ठ, कोई नहीं। एक बार श्री प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे 1972 में, और कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान कहते हैं गीता में मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। फिर श्री प्रभुपाद जी एक क्षण के लिए रुकते हैं और कहते हैं एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, राधा रानी। और फिर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये प्रेम का संबंध है, ये सेवा का संबंध है, इसलिए वो श्रेष्ठ है, सेवा का संबंध है। तो उसके आगे श्री प्रभुपाद जी फिर गाते हैं, दामोदर रती वर्धन वेशे ललिता सखी गुण हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। बोलते दामोदर रति वर्धन वेशे, यहां पर गुण बताते हैं राधा रानी क्यों श्रेष्ठ मानी गई हैं। तो राधा रानी अपने आप को सिर्फ इसीलिए सजाती हैं क्योंकि कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं और उनकी रति उससे बढ़ती है। अर्थात उनका स्वरूप, इस उनका जो स्वभाव है वो यही है कि कृष्ण किस चीज से, किस वस्तु से प्रसन्न होंगे उसमें ही उनकी रुचि है। दामोदर रति वर्धन, दामोदर की रति या कृष्ण की रति जिसमें बढ़े उसमें। यहां पर भी शब्दों का खेल है, दामोदर अर्थात कौन, अभी हम लोग जाएंगे उस क्षेत्र में ही इसके बाद। दामोदर अर्थात लाला कृष्ण, जिन्हें बांध दिया गया ना रस्सी से, बंध गए। जब कोई चीज बंध जाती है तो सीमाग्रस्त हो जाती है ना वो, समझ रहे हैं आप। कोई चीज बंध गई किसी भी कारण से तो फिर उसे सीमाएं लग जाती हैं, उसके परे वो वस्तु जा नहीं सकती। तो दामोदर का अर्थ है ये बंध चुके हैं। कैसे बंध चुके हैं? भक्तों के प्रेम से बंध चुके हैं, हो गया। अब कृष्ण बंध गए, मतलब समझ में आ गया, अब कृष्ण नहीं, कृष्ण बंध गए, कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण को हम बांध लेंगे, उनकी सीमाएं समझ में आ गई। लेकिन रति वर्धन, वर्धन शब्द का इसलिए प्रयोग यहां पर, ये शब्दों का खेल है, कवि हमारे रूप गोस्वामी कवि हैं। वर्धन फिर भी हो रहा है, मतलब सीमाएं टूट गई। कैसे टूटी? सिर्फ राधा रानी के अलंकार करने से बस। मतलब राधा रानी ने बैठकर कोई हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया और ऐसा नहीं कि 16 माला बैठकर जप करने लगी, गुरु ढूंढते हुए गई, स्वाभाविक। ये तो उनके लिए जिनका स्वभाव, जो स्वभाव भूल चुके हैं, हमारे लिए हम अपना स्वभाव भूल चुके हैं, नित्य कृष्ण दास ये हमारा स्वभाव है, नित्य कृष्ण बॉस हो गए हम, है ना, दास की जगह बॉस हो गए। ये द शब्द बाद में आता है, ब पहले आता है ना, तो जो पहले आए वो पकड़ने में ज्यादा आनंद आता है हमें, पहले दर्शन मिले, पहले प्रसाद मिले, पहले पहले, पहले। लेकिन राधा रानी का स्वभाव है कि मात्र सिर्फ उनके अलंकार, इतना इतने सरलता वश भगवान की सेवा कर लेते हैं, इतने स्वाभाविक वश स्वाभाविकता भगवान की सेवा कर लेते हैं कि जिस चीज से भगवान बंधे हुए वो बंधन भी अपने आप टूट जाता, भगवान को पता भी नहीं चलता, रति उनकी बढ़ने लगती है। तो दामोदर रति वर्धन वेश हरि निष्कुट करुणा कुरु मई करुणा भरीते। आप प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए राधा रानी बहुत करुणामयी, ये बहुत हमारे करुणा की देवी हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये तीसरा चीज बताते हैं उनके गुण के बारे में, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन हम में से किसी को जैसे हमें हमारे श्यामचरण प्रभु ने यहाँ पे बिठा दिया तो हमें लग रहा है हम बहुत श्रेष्ठ हैं, है ना, हम आप सबको सामने बैठे हुए हैं प्रवचन करें तो श्रेष्ठ। तो जब व्यक्ति अपने आप को किसी श्रेष्ठ स्थिति में पाता है तो फिर अपने आप वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। आपको लग रहा है कि मैं यहां पर जमीन पर बैठा हूं, लेकिन वास्तव में अंदर की बात यह कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं, हवा में उड़ रहा हूं। मन में यह बात आ गई कि मैं श्रेष्ठ हूं, और जब व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है तो उसमें करुणा कम हो जाती है, दया अपने आप कम होती, साथ साथ नहीं जाते। तो यहां पर कहते हैं राधा रानी भले की बहुत श्रेष्ठ है फिर भी वो करुणा देवी है। कृष्ण कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्या आप अपने आप को पूरा धो धाकर आए हो, स्नान वन करके आए हो कि नहीं मेरे पास? तो हम कहेंगे क्या करें, आज हमारे वो जहां पर हम रुके थे वहां पर पानी नहीं आया भगवान, और यात्रा के जितने प्रयोजक है उन्होंने फिर पानी दिया नहीं, और बिस्लरी बहुत महंगा है, मुंह धोले बहुत हो जाए, स्नान कहां से करें। तो आप समझिए कलयुग है प्रभु। तो भगवान कहते ना ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, मां सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद ही मेरे पास आओ। तभी तो बगल में राधा रानी है, तो उनके पास देख करके तो ओ करुणा देवी आप कुछ कीजिए। तो राधा रानी कहते आया है ना आपके पास, आए हैं ना ये सज्जन, ये देवी आई है ना आपके पास। अरे आए हैं कितने, सोचिए कौन आता है आपके पास। अरे कैसे सज्जन पुरुष ये आपके पास आए, आने की कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी आए आपके। मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूं, ये तो कहीं दूर थे और आपके पास आ गए, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ है। ये सामने जो भक्त खड़े हैं मुझसे श्रेष्ठ हैं, दूर रहकर भी आपके पास आए हैं, इसलिए आप इन्हें स्वीकार लीजिए। अब कृष्ण जो है गीता की पोथी लेकर खड़े हैं, अरे कहां पर ये रूल मैंने दिया हुआ है, मैंने तो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मां, में ये क्या हो गया। तो राधा रानी ने कहा ये पोथी बंद कीजिए यार। अब आप देखिए ये आए हैं आपके पास, ये मुझसे श्रेष्ठ हैं। भगवान जो हैं राधा रानी को देखते हैं, उनके चेहरे पर उनके करुणा को देखकर भगवान पूरा अपना शास्त्र ये सारे नियम सब भूल भाल के कहते हैं ठीक है भैया तू आ जा अंदर, तुम भी आ जाओ इस लीला में। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है हमारे पास गुण, कोई गुण नहीं है, हाँ दुर्गुण है, ये गुण है हमारे पास। ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं है, दुरूपी गुण है, दुर्गुण बहुत है हमारे पास, हाँ जो भगवान से हमें दूर ले जाते हैं, इसे दूर गुण, ऐसे गुण जो दूर ले जाए ना। तो क्या गुण है, पूरा होपलेस, मतलब भगवान को अगर दिखाएं तो कहे जब हम होपलेस हैं, देखो इसमें भी होप है, होप प्रभु, भले ही लेस हो कम हो लेकिन है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो होप है ना भले कितना ही कम हो, वो यह है कि राधा रानी कहेंगे ये मुझसे श्रेष्ठ भक्त है, आया है आपके पास, ये देवी यहाँ आई हैं, इसलिए आप स्वीकार लीजिए। फिर कृष्ण क्या करें, कर क्या सकते हैं, है ना, दामोदर रति वर्धन, रति तो वर्धन हो चुकी है इसलिए उन्हें मानना ही पड़ता है। फिर श्री प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते बोलते अरे आपने क्या कह दिया, अच्छा है आप जो है पूरा सर मुंडवा कर शिखा रह कर जो बोले सब सही है, करुणा कुरुमयी हो गई है, ये कैसे हो सकता है, आपके कहने पर हो जाएगा। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, हमारे कहने पर नहीं, अरे हमारे कहने पर तो कुछ हिलता नहीं कुछ डुलता नहीं। सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव, क्योंकि सनक सनातन जैसे श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ मुनिवर कह चुके हैं, इसलिए इसलिए वो वर्णित चरित्र, उनके चरित्र का जो वर्णन कहते हैं करते हैं वो करुणा देवी हैं, इसलिए उनके पास जाकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे श्यामचरण प्रभु ने कहा कि यहाँ पर एक ब्रह्म कमल में हमारी श्रीमती राधा रानी बस यहीं पर पास में, मतलब पास में मतलब ये मत सोचिए कि झांक कर दिख जाएगा, झांक कर देखेगा तो यहाँ पर खाली जमीन दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जमुना माई बहती हैं, आज भी बहुत पानी भर जाए तो यहाँ तक जल आ जाता है। ये पास में जो है ये बगीचा है हमारे राधा रानी का बगीचा है, ये उनका महल है जहाँ पर वो प्रकट हुई थी। भानु महाराज पूर्व काल में बहुत तपस्या किए थे, भानु बाबा और सुलोचन कलावती पति पत्नी थे, हजारों वर्ष तपस्या किए भगवान की कि प्रभु हमें सेवा दीजिए कि वात्सल्य भाव में हम आपकी सेवा करें, तो ये उनकी इच्छा थी। तो उनकी तपस्या के फल स्वरूप और साथ ही साथ सूर्यदेव भी, कुछ पुराण कहते हैं हमारे सूर्यदेव सूर्य नारायण जी वो भी विचार कर रहे थे कि कुछ तो सेवा मिले प्रभु की। तो ये दोनों जो सज्जन हैं, ये दोनों जो व्यक्तित्व हैं, महीभानु के तीसरे पुत्र के रूप में, महीभानु जी यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध जमींदार है, जागीरदार हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं यहाँ के। जैसे आपने सुना है ना हमारे नंद बाबा के पास 9 लाख गईयां हैं, हमारे भानु महाराज के पास 11 लाख गईयां हैं, सब दूध देने वाली। ये सब दूध देने वाली गईयां हैं, तो बहुत रईस हैं। हाँ तो लेकिन संतान नहीं थी, तो बहुत परिश्रम किया, बहुत तपस्या की, बहुत यज्ञ किया, बहुत दान किया। तो किसी ने कहा कि देखिए यहाँ पर जोग माया बहुत मानी हुई है, कात्यायनी देवी के रूप में आप उनकी सेवा कीजिए, व्रत कीजिए, तो फिर कुछ हो सकता है। तो भानु महाराज अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी, कृष्ण के माँ का नाम क्या है, निश्चित रूप से ना यशोमती, यशोमती मैया, यशोदा, दा जो यश दे किसी को प्रदान करें, यशोदा। तो वैसे कीर्ति दा, ये हमारी राधा रानी की माँ है, कीर्ति दा, जो कीर्ति प्रदान करें, जिनसे कीर्ति आए, एक से यश आता है, एक से कीर्ति आता है, ये दोनों कुल बहुत ही श्रेष्ठ कुल है। तो कीर्तिदा देवी वो भी बहुत रईस घराने से थी, विवाह हुआ, बहुत संतान नहीं हुई बहुत वर्षों तक, तो तपस्या की तो उन्हें एक संतान प्राप्त हो और हुआ, संतान प्राप्ति हो गई, एक बालक प्राप्त हुआ, इतना सुंदर इतना मधुर। पौर्णमासी देवी आ गई, उन्होंने देखा, कहा अरे ये बालक इतना, इसमें सारे श्रेष्ठ गुण है, ये आगे चलकर कृष्ण और बलराम का सखा होगा, इसका नाम श्रीदाम रखो। तो संतुष्ट है, लेकिन फिर भी मन में इच्छा है कि नंद बाबा के यहाँ तो कन्हैया प्रकट हुए हैं, और नंद बाबा और भानु महाराज बहुत ही निकट के मित्र हैं, तो उन्होंने विचार किया कि हम दोनों का संबंध और घनिष्ठ कैसे होगा, बाबा का, नंद महाराज का और हमारा संबंध और घनिष्ठ कैसे हो। तो जब वहां पर कन्हैया प्रकट हुए हैं तो मन ही में बहुत विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक बालिका प्रकट हो तो फिर संबंध घनिष्ठ हो जाएगा, हमारे यहाँ कन्या प्रकट हो तो पहले से अभिलाषा है संतान प्राप्ति की, अभिलाषा अब कन्या प्राप्ति की है। तो बहुत तपस्या उन्होंने, व्रत भी किया और ब्रह्मा जी की भी बहुत तपस्या की। तो एक दिन प्रातः काल भद्र मास का जो सप्तमी था, शुक्ल सप्तमी भद्र मास का, उस रात्रि को बहुत तीव्र इच्छा मन में कि हे प्रभु आप हमारी इच्छा संतुष्ट कीजिए, हमें एक ऐसे कन्या प्रदान कीजिए जिससे कि सर्वत्र पूर्ण ऐश्वर्य और शुभ छा जाए, जो सबके मन को प्रसन्न करे, जिस गुणों से संपन्न हो, सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसे मन में बहुत तीव्र इच्छा, दोनों रात भर सो नहीं पाए। प्रातः काल जब भोर हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तो बाबा निकले महल से बाहर और गए अपने जो प्रातः काल की क्रियाएं हैं उसके लिए, जमुना में गए, जमुना मैया यहाँ पर उनके जल से एक सरोवर बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सुंदर पुष्प थे, विशेष करके कमल के पुष्प थे, बहुत सुंदर ये उद्यान था यहाँ पर, जल उद्यान। तो बाबा गए वहां पर जमुना में, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं अपना, अचानक जमुना में उन्हें बहुत ही तेज रोशनी, तेजस्वी कोई स्थान ऐसे प्रकट ऐसा दिखाई पड़ा। ये क्या है? पास गए तो देखे कि हजारों कमलों वाला, हजारों पंखुड़ियों वाला एक सुनहरा कमल है। बाबा विचार करने लगे, ये जमुना में आज अचानक ये कमल कहाँ से है? तो ये अष्टमी का दिवस है, शुक्लाष्टमी, भद्र मास का, ऋषिकेश मास का। तो बाबा विचार कर रहे हैं कि आज क्या शुभ दिन है, कुछ है क्या है? तब तक ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए, ब्रह्म मुहूर्त था भी वैसे, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहे कि वृषभानु महाराज, आपकी जो अभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर ये कमल प्रकट है, इसमें एक सुंदर कन्या है, ये आप ही की कन्या है, इसे बड़े प्रेम से आप इसका देखभाल कीजिए, ये साक्षात परम लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, इन्हीं से सब कुछ। और फिर बहुत सारा वो तत्व समझाने लगे। भानु महाराज ने ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी और गदगद होकर उन्होंने उस पुष्प, उस कमल में से उस सुंदर सुनहरे कन्या को जिसे स्पर्श करते ही भानु महाराज के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। और एक तो जमुना में पहले से ही है और नेत्रों से ऐसे जमुना धारा बहने लगी कि किस जमुना को देखे लोगों जो कमल पुष्प है वो हैरान हो गए, इस जमुना में रहे कि इस जमुना में रहे, रोमांच में इतने अश्रु धाराएं होने लगी, बहने लगी। किसी प्रकार से उन्होंने अपने रोमांच को रोका और उसे उठाकर कीर्ति माँ के, कीर्तिदा माँ के पास ले आए और कहे कि ये तुम्हारी कन्या है। तो बहुत प्रसन्न हो गए और सारा जो ब्रज है वो हर्षोल्लासित हो गया ये राधा रानी का सौंदर्य रूप गोस्वामी कविता में लिखते, कहते राधा रानी की अंग कांति, उनका उनका इतना सुनहरा अंग कांति है और इतना सुंदर है उनका स्वरूप कि मानो जैसे कि एक कमल का पुष्प जो है वो प्रफुल्लित हो गया हो, उजागर हो। फिर वो कहने लगे कि और उनके जो मुख चंद्र है वो मानो जैसे कि हजारों पुष्प लताओं के समान है, कमल के पुष्प लताओं के समान है। फिर रूप गोस्वामी अपनी कविता में कहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं कि राधा रानी का मुख चंद्र, अरे ये चंद्र जो है कभी कभी पूर्णिमा के दिवस सुंदर लगता है, उगता है तो उस समय उसका सौंदर्य इतना नहीं, जब मध्यान रात्रि में ऊपर आ जाता है चंद्र तो सुंदर लगता है, फिर प्रातः काल लुप्त हो जाता है, सूर्य के रोशनी में दिखाई नहीं पड़ता। और एक कमल, कमल भी तो जब सूर्य प्रकट होते हैं तब वो खिलता है और सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है, लेकिन हमारे राधा रानी का जो स्वरूप है, उनका जो सौंदर्य है, वो कभी उगता नहीं और कभी बंद नहीं होता, वो तो नित्य ही प्रकाश में है। तो क्या तुलना की जाए कमलों से और क्या तुलना की जाए चंद्रों से, हमारे राधा रानी अपने आप में बहुत सुंदर है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करके दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और गांव के निवासियों को जब ये समाचार मिला तो मानो जैसे कि वर्षों की कोई बहुत तेज पीड़ा उनके मन और हृदय से अचानक गायब हो गई हो, कोई विरह था, कोई पीड़ा थी, गायब हो गया। सब दौड़े दौड़े बाबा के घर आ गए, बाबा क्या समाचार, सुंदर समाचार, कहाँ है कन्या, बाबा सबको कन्या का दर्शन करवा रहे हैं। और फिर बाद में माँ ने कहा रुको रुको रुको, आंख में से काजल निकाल कर थोड़ा लगा दिया नजर ना लग जाए, फिर दर्शन, बहुत उत्सव चल रहा है। फिर बाबा ने कहा अब सब जाओ, ये भूखी होगी, इसे थोड़ा सा आराम करने दो। तो कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन किसी प्रकार से भगवान के ही प्रयोजन से सब कोई वापस चला गया। बाबा ने उसे पालने में रखा और दिन भर उसे लोरी गवा रहे हैं, श्रीदामा वो भी छोटे से भी बालक हैं बस रेंग रहे हैं, वो आकर अपने अब बहना आई है घर में तो वो भी बहुत खुश हैं, घर में बहुत हर्ष है, उत्सव है। दूसरे दिन प्रातःकाल पौर्णमासी देवी आ जाती हैं, उन्हें पता है यहाँ पर पौर्णमासी देवी अर्थात सारे ब्रज की गुरु, वो आती हैं आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं ये साक्षात लक्ष्मी हैं, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, कुछ उपदेश करती हैं, कुछ ध्यान दिलवाती हैं, फिर वो चले जाती हैं। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों पश्चात वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माँ देख रहे हैं कि बालिका हमेशा से पालने में रहती है लेकिन इसकी आंखें खुल नहीं रही हैं, ये क्या जन्मजात अंधी है, और साथ ही साथ हमारे बोलने पर कुछ ध्यान नहीं देती है, क्या ये बहरी भी है, और स्वयं इसके मुख से कोई आवाज ध्वनि नहीं निकलती, क्या ये गूंगी भी है। चिंता हो गई, गूंगी बहरी अंधी बालिका, लेकिन क्या करे इतनी सुंदर है कि उन्होंने कहा ये सारे चीज कोई महत्व नहीं रखते है ना? जैसे कभी कभी जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, बासमती राइस हो तो फिर क्या, चावल मतलब बासमती, भले एक ठीक से पका भी ना, बासमती कोई बात नहीं, घी डाल के थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाए लेकिन बासमती है ना। तो उसी प्रकार से थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, कितनी सुंदर कन्या, लेकिन करें क्या, लोग अब आएंगे तो पूछेंगे ये आंख नहीं खोलती, ये कुछ बोलती ही नहीं, थोड़ा से लोक लज्जा के कारण उन्होंने भीतर ही उसे छुपा दिया, कोई मिलने आता तो कहता ना ना कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कहां चली गई, ऐसे कुछ करके टाल देते बात। अब नारद मुनि, उन्हें पता चल गया कि कृष्ण यहां पर आए हैं, उन्होंने कहा कृष्ण तो आए हैं, चलो उनका दर्शन किया जाए, चले गए नंद बाबा के घर गोकुल में, वहां पर दर्शन किया, भगवान का दर्शन करके प्रार्थनाएं की, दंडवत किया, फिर बाहर निकलते हुए विचार किया अगर कृष्ण आए तो राधा भी आई होंगी कहीं ना कहीं, ये कौन सी बात हुई कि उनका दर्शन कर लिया, इनका दर्शन ही कहां है। उन्होंने निकाला अपना जीपीएस, जीपीएस में कहीं दिखे नहीं ना, इंटरनेट काम करे ब्रज में, अब सोचा मोबाइल फोन पर किसी को पूछ ले, श्यामचरण जी को फोन लगाया, मोबाइल काम ना करे, उन्होंने कहा देखिए जी हम बिजी हैं, लेक्चर चल रहा है, बाद में फोन कीजिएगा, इस रूट की सारे लाइनें व्यस्त हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, नारद जी भ्रमण करने लगे 84 कोस ब्रज में, विचार किया कहाँ होंगी कहाँ होंगी, फिर उन्होंने विचार किया इस मुखारावली गांव में सब कुछ इतना शुभ क्यों है, इस मुखारा वाली गांव में सबको इतने संतुष्ट और इतने आनंदित क्यों है? वो तो गोकुल में होने चाहिए ना, यहां पर कैसे इतने आनंदित हैं? तो सोचा कि नहीं, यहीं पर मुझे ध्यान देना चाहिए। तो पूछताछ किया, किसने कहा हाँ हमने सुना है बाबा के यहां, लेकिन आजकल बोलते हैं कि कुछ नहीं है। नारद मुनि तो बिल्कुल जैसे कुछ सूंघ लें तो समझ लेते हैं ये यहां पर होना ही चाहिए। तो नारद मुनि आगे सीधे खड़खड़ाया दरवाजा, ओ महात्मा जी आइए भीतर आइए, उनका अवगत हुआ, स्वागत हुआ। नारद मुनि ने कहा ठीक है बाबा, बाबा भानु महाराज आपके यहां कोई संतान है? बोले हाँ। ओ कीर्तिदामा थोड़ा श्रीदामा को ले आओ। श्रीदाम, नारद मुनि सोचने, श्रीदामा, श्रीदामा जी आए। जब उनका दर्शन किया नारद मुनि के रोमांच, नारद मुनि इतने गदगद हो गए, बोले कितना सुंदर बालक है, अद्भुत बालक है, आशीर्वाद आशीर्वाद दिए। उसके बाद नारद मुनि निकल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, फिर मुड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं ना क्या विचार कर, आया था ढूंढने कन्या, दर्शन हो गया एक बालक का, बालिका कहाँ है? लेकिन बाबा तो बोले मेरा यही बच्चा है, फिर से पूछू नहीं पूछ। अच्छा बाबा ये आपकी कोई और, तब तक बाबा मन में विचार कर रहे हैं, हमारे भानु महाराज विचार कर रहे हैं कि संत महात्मा है, क्या पता संत महात्माओं की कृपा से कुछ अद्भुत चमत्कार हो जाए, मेरी कन्या जो है बोलने लगे, देखने लगे, हंसने लगे, कुछ करने लगे। तो मुड़कर नारद मुनि बोलते बाबा क्या आपके यहाँ और कोई, तब तक बाबा बोलते नारद मुनि मेरी और एक कन्या है। कहाँ है वो बताइए। नारद मुनि जो दरवाजा बंद करके वापस भीतर दौड़े गए, कहाँ है? बोले भीतर आइए, भीतर आइए। नारद मुनि जैसे भानु महाराज तो मुड़कर अंदर जा रहे हैं, उन्हें देखा कीर्तिदामा कहीं नहीं है, जो उछल कर बोले अरे बोल, राधा रानी पता चल गया ना, लेकिन मुंह से आवाज ना निकले क्योंकि किसी को दंग नहीं करना चाहते हो। तो नारद मुनि चुपचाप नहीं, बड़े आनंद में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चुपचाप पीछे गए और वहां पर उन्होंने श्री राधिका का दर्शन किया। और जैसे ही दर्शन किया नारद मुनि तो स्तब्ध खड़े रह गए। वृष भानु महाराज बोल रहे महात्मा जी, नारद मुनि जी थोड़ा आप कुछ देखिए हमारी बालिका ऐसे। नारद मुनि तो कुछ चू ऊ कुछ नहीं करे। तो भानु महाराज सोचे शायद ध्यान चल में गए हैं, कुछ अपना अस्त्र कुछ अपने तंत्र मंत्र कर रहे होंगे। तो भानु महाराज ने सोचा इन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए ना, जब बाबा संत महात्मा कुछ ध्यान करे तो अकेला छोड़ना अच्छा है। तो भानु महाराज दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले नारद मुनि दंडवत पे दंडवत करने लगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार। फिर उसके बाद नारद मुनि ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, पीठ का दर्द हो या पैर का दर्द दंडवत करते रहिए राधा रानी को, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ठीक है, अभी दो मिनट में समाप्ति करने के लिए, 15 मिनट ज्यादा हो गया, समाप्ति कर। तो नारद मुनि जो है दंडवत करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उसके बाद कहने लगे कि हे राधा रानी कृपा करके अपना वो कैशोर स्वरूप दिखाइए, जिससे कि आप कृष्ण को हरि को आप मुग्ध कर देती हैं, हे हरि वल्लभा वो दर्शन करवाइए। तो राधा रानी ने उनके इस पुकार को सुनकर उन्होंने तुरंत अपना कैशोर स्वरूप का दर्शन करा। सारी सखियां ललिता सखी विशाखा देवी तुंग विद्या चित्रलेखा सब कोई आ गए, सुदेवी रंग सब प्रकट हुआ। जामनद मुनि ने जब ये सारा एकदम संकीर्तन पार्टी देख लिया, बोले तो नारद मुनि जी का तो हरि बोल हो गया वहां पे। सही में नारद मुनि तो एक खाली राधा रानी का दर्शन करके स्तब्ध रह गए। आप सोचिए कितने बार स्तब्ध हो गए होंगे उस समय। उनके स्थिति को देखकर ललिता सखी ने, बाकी सखियों ने जल लाया, राधा रानी का चरण जो है उसे धोया, और चरण जो वो जल है चरणामृत वो लेकर नारद मुनि के शरीर पर छिड़का। तब नारद मुनि की शुद्ध बुद्ध वापस लौटी। नारद मुनि ने प्रार्थना किया, हाथ जोड़े खड़े थे, तो उस समय ललिता सखी ने कहा कि ये जो स्वरूप है सबको दर्शन नहीं होता, क्योंकि आपने हरि की बहुत सेवा की होगी, आपने बहुत अच्छे से नाम जप किया होगा 16 माला, और आपने अच्छे से खाली प्रसाद ही ग्रहण किया होगा, और सिर्फ हमेशा से आपने इन कर्णों में सिर्फ हरि कथा ही जाने दिया होगा, इसलिए आज आप राधा रानी का दर्शन कर रहे हो, नहीं तो ये दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो अब आप जितना मन से दर्शन करना चाहते हो दर्शन करके हृदय में उतार लो, क्योंकि यह स्वरूप अब लुप्त होने वाला है। और उसके बाद राधा रानी फिर से बालिका स्वरूप में आ गई। नारद मुनि गदगद होकर बाहर निकले। ब्रजभानु महाराज ने कहा कुछ हो सकता है? नारद मुनि ने कहा सब ठीक हो जाएगा, समय में सब ठीक हो जाएगा, बहुत ही महान व्यक्ति। लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब तक नंद बाबा को पता चला कि कन्या आई है, तो नंद बाबा कीर्तिदाम माँ कन्हैया बलराम जी रोहिणी देवी पूर्णमासी जी और उपनंद इत्यादि सारा टोली यहाँ पर आ गया, बाबा के यहाँ पर, भानु महाराज के यहाँ पर उत्सव हुआ। एक दूसरे से बात, भानु महाराज जब देखे नंद बाबा आए तो गले से मिल लिए, बहुत प्रेम से मिले। कीर्तिदा माँ ने यशोदा माँ को उन्हें देखा, उन्हें हाथ पकड़कर भीतर कमरे में ले गई, वहां पर जाकर उन्हें आलिंगन किया, बातचीत करने लगे कि हमारी कन्या है, ये समस्या है। नारद मुनि भी आए थे, तब तक बात में ही और भगवान के योग माया के प्रयोजन से ही दोनों इतने मुग्ध हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला। भगवान जो है मैया की गोदी में से निकल कर रेंगते हुए पालने में गए और पालना पकड़ के खड़े हुए देखने के लिए क्या है अंदर। अब देखिए सोचिए कि ये पहली बार भगवान अभी तक रेंग रहे हैं, चलना सीखे नहीं है, खड़े भी नहीं होना सीखे हैं, यहाँ पर खड़े हो गए और पालना है जो झूलता है आगे पीछे और खड़े होकर देखना चाहते क्या है। और जब देख लिए तो फिर भगवान कैसे खड़े रहे, वो तो लटकने लगे हैं। अब लटके हुए भगवान गिरे छोड़े पकड़े समझ में नहीं आया, तो हाथ ऐसे ऐसे करने लगे, एक हाथ से पकड़े हैं, एक हाथ से झूल रहा है, दूसरे हाथ से ऐसे स्पर्श कर लिया। जैसे स्पर्श किया राधा रानी को समझ में आ गया कि हमारे प्राणवल्लभ हम कृष्ण तो यहाँ पर, कन्हैया तो यहाँ पर आ गए हैं। तब जाकर उन्होंने अपने कमल जैसे सुंदर नेत्र जो हैं वो खोल दिया और पहली बार इस संसार में सबसे पहले कृष्ण का ही दर्शन हो यह उनका संकल्प था, वो संकल्प उनका पूरा हुआ और मुख से हरे कृष्ण हमारे मुख से निकला है, ये उनके मुख से कृष्ण हरे अर्थात राधा रानी, इसलिए हमें राधा कृष्ण कृष्ण। और तुरंत बाहर भानु महाराज को तो उनके किल्लोल के रूप में सुनाई पड़ गया और सबको अरे क्या हुआ, आवाज आ गई, किल्लोल हो रहा है अंदर, सब दौड़े हुए हैं देखे। और तब तक भगवान जो है उन्होंने कहा कि बहुत हो गया लटकना, उतर गए थे नीचे। माँ यशोदा कीर्तिदा माँ तो तुरंत चले गई, बेटी को उठा लिया। माँ यशोदा ने कहा ये कहाँ कन्हैया चले गए, उन्होंने उठा लिया और फिर दोनों बहुत इस प्रकार से राधा रानी ने पहली बार अपने नेत्र यहीं पर खोले, सिर्फ तब तक बंद रखे थे जब तक कि भगवान का दर्शन ना हो। उसी प्रकार से हमें भी अपने नेत्र तब तक बंद रखने चाहिए जब तक कि भगवान का दर्शन ना हो। इन नेत्रों को मत बंद रखिए जो हमारी प्रलोभन के नेत्र हैं, सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारा प्रलोभन है, उन नेत्रों को हमें बंद रखना चाहिए कुर्म की तरह, और तभी उनको प्रकट करना चाहिए जब प्रलोभन का सबसे श्रेष्ठ और उच्चतम वस्तु जिसके प्रति हमारा प्रलोभन लग जाए हमेशा के लिए, वो हमारे सामने प्रकट हो, अर्थात श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, राधा रास बिहारी जी प्रकट हो, तब तक हमें उन नेत्रों को बंद रखना चाहिए। और उन्हें बंद रखने का और खोलने का भी प्रयास जो प्रक्रिया है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री मुखारवल्ली धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण।
जो आवाज अमृत धारा बह रही थी उसको रोकने में मुझे बहुत शोक का अनुभव हो रहा है। और क्या करें, हम भी जैसे भगवान यहाँ पे आकर के गोकुल में इस क्षेत्र में आकर के दाम बंद हो जाते हैं, तो हम भी समय सीमा के अंतर्गत बंद है।
बैठने के लिए बोलो, बैठने के लिए बोलो,
बेटा बैठे रहिए, और लेक्चर होने वाला है, यहाँ पे कोई नहीं चाहिए।